ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् अहं वंदे परमानंद माधवं गुरुदीनतारणं। तो आज श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद चार श्लोक अध्याय 30 और श्लोक संख्या 22। मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रचेतसा उचु नमः नमः क्लेश विनाशनाय निरूपिता उदार गुण अवायया मना वच वेग पुरा जवाया सर्व अक्ष मार्गेर अगत अध्वने नमः। प्रचेतेसा उचु नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो दार गुणाह आवायाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गेर अगता ध्वने नमः। प्रचेतस उचु नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपतो दार गुणाह वायाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गेर अगता ध्वने नमः। प्रचेतसा उचु नमो नमः क्लेश विनाशनाय నిరూపతోదార్గుణాః వాయయా మనోవచో వేగపురోజావాయా సర్వాక్షమార్గేరగతాధ్వనే నమః ప్రచేతసా ఉచు నమో నమః క్లేశ వినాశనాయ నిరూపతోదార్గుణాయ మనోవచో వేగపురోజవాయ సర్వక్షమార్గేరగతాధ్వనే నమః ప్రచేతసా ఉచు నమో నమః క్లేశ వినాశనాయ నిరూపతోదార్గుణాహవాయాయ మనోవచో వేగపురోజవాయ సర్వాక్షమార్గేరగతాధ్వనే నమః నమో నమః క్లేశ వినాశనాయ నిరూపతోదార్గుణాహివాయాయ మనోవచో వేగపురోజవాయ సర్వక్షమార్గేరగతాధ్వనే నమః వైష్ణవీ స్మత ప్రచేతసా ఉచు నమో నమః క్లేశ వినాశనాయ నిరూపతోదార్గుణాః వాయాయ మనోవచో వేగపురోజవాయ సర్వాక్షమార్గేరగతాధ్వనే నమః ప్రచేతసా ఉచు నమో నమః క్లేశ వినాశనాయ నిరూపతోదార్గుణాహివాయాయ మనోవచో వేగపురోజవాయ సర్వాక్షమార్గేరగతాధ్వనే నమః ప్రచేతేసా ఉచు ప్రచేతాఓ నే కహా నమః నమస్కార్ హై నమః నమస్కార్ హై క్లేశ భౌతిక దుఃఖ వినాశనాయ దూర్ కర్నే వాలే కో నిరూపిత నిర్ణీత ఉదార్ ఉదార్ గుణ గుణ అహవాయాయ నామ వాలే కో మనా మన కా వచః వాణీ కా వేగ చాల్ పురా సామనే జవాయా గతి వాలే కో సర్వ అక్షః సభీ ఇంద్రియో కే మార్గేరా రాస్తో సే అగత్ అదృశ్య అధ్వనే జిస్కా మార్గ నమా హమ్ నమస్కార్ కర్తే హైన్ అనువాద్ ఔర్ తాత్పర్య శిలా ప్రభుపాద్ జీ కే ద్వారా శిలా ప్రభుపాద్ కీ ప్రచేతాఓ నే కహా హే భగవన్ ఆప్ సమస్త ప్రకార్ కే క్లేశో కో హర్నే వాలే హైన్ ఆప్కే ఉదార్ దివ్య గుణ తథా పవిత్ర నామ్ కళ్యాణ ప్రద హై ఇస్కా నిర్ణయ పహలే హీ హో చుకా హై ఆప్ मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं, आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते। अतः हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, निरूपित शब्द जिसका अर्थ है निष्कर्ष निकाला, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर को खोजने अथवा आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए कोई शोध नहीं करनी होती है। वेदों में निष्कर्ष रूप से सब कुछ दिया हुआ है। भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहम इव वेद्यो। वेदों के द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त करना पूर्ण तथा निर्णायक होता है, वेदों का कथन है। अतः श्री कृष्ण नामादि नम भवेद ग्रहयम इंद्रिय, हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाएं नहीं समझी जा सकती। सेवोन मुके ही जिवादो समेव स्मृत यदा, जब भक्त अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है तो भगवान अपनी अहेतुकी दया से भक्त के समक्ष स्वतः प्रकट होते हैं। यही निर्णायक वेद विधि है। वेद यह भी संकेत करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने मात्र से निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। हम भगवान के पास मन या वाणी के वेग से नहीं पहुंच सकते, किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहें तो उनके पास सरलता से तथा तेजी से पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर भक्ति से आकृष्ट होते हैं और अपेक्षा इसके कि हम उन तक अपनी मीमांसा से पहुँचे, वे हमारे पास अधिक वेग से पहुँच सकते हैं। भगवान ने कहा है कि वे ज्ञान की सीमा तथा विचार की गति से परे हैं, फिर भी उनकी अहेतुकी कृपा से उन तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। इस प्रकार वे अपनी अहेतुकी कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, अन्य विधियां प्रभावशाली नहीं होती। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य संपन्न होता है। श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति सुपदांतिकं। वंदेयं श्री गुरो श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवाक्ष च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखानमिता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रचेतसः उचु नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरोपितो दार गुणा हिवायाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गेर अगता ध्वने नमः। प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं, आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कल्याण प्रद हैं, इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं, आप भौतिक इंद्रियों तथा द्वारा नहीं देखे जा सकते, अतः हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो यहाँ राजा प्राचीन भविष्यत के पुत्र, जिन्होंने भगवान शिव की प्रेरणा से 10,000 वर्षों तक जल के भीतर रह कर के रुद्रगीर्त के द्वारा भगवान को स्मरण किया, भगवान की आराधना की, भगवान की तपस्या की और भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं प्रचेताओं के समक्ष, और भगवान ने उपदेश, भगवान ने संदेश प्रचेताओं को दिया और अब प्रचेतागण भगवान की, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो आज का जो ये श्लोक है, जो जिसमें प्रचेतागण भगवान से स्तुति करते हैं, और स्तुति जब भगवान की जाती है तो सामान्य रूप से स्तुति शुरू करते समय सबसे पहले जो शब्द आते हैं, भगवान को प्रणाम करना, नमो नमः, नमो नमः, सबसे पहले भगवान से प्रणाम किया जाता है और उसके बाद में फिर हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में और अनेक अन्य ग्रंथों में अनेक प्रसंग हैं, अनेक कथाएं हैं, और उन कथाओं के अंत में अनेक प्रार्थनाएं होती हैं। जितने भी भगवान की लीलाएं, जितनी भगवान की कथाएं होती हैं, और कथा के अंत में फिर प्रार्थना। प्रभुपाद शिल प्रभुपाद कहते हैं कि द प्रेयर्स आर आवर ओनली बिजनेस, हमारा एक ही कार्य है भगवान से प्रार्थना करना, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारी जो जड़ बुद्धि है, क्योंकि ये जड़ बुद्धि है और हमारी रुचि जो है वो कथाओं में तो हो जाती है, कथाओं को सुनने में तो हम रुचि उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन कथाओं के अंत में जब प्रार्थना आती है भगवान के प्रति, तो हमको लगता है कि ये प्रार्थनाएं तो इसको फिर देख लेंगे, इसको फिर पढ़ लेंगे, प्रार्थनाएं तो एक जैसी होती हैं, एक जैसी प्रार्थनाएं होती हैं। और भागवतम में अब देखते हैं कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान से, भीष्म पितामह देह त्याग करते समय प्रार्थना करते हैं, और अनेक प्रार्थनाएं हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, और कितनी ब्रह्मा जी की प्रार्थना, इंद्र जी की प्रार्थना, अनेकों प्रार्थनाएं, जहाँ कथा वहाँ फिर लीला, फिर अंत में प्रार्थना। तो वास्तव में प्रार्थनाएं हमारी भक्ति का एक आधार है, भक्ति का रीढ़ है। दिखने में लगता है कि प्रार्थना एक जैसी है, प्रार्थना के जो भगवान का जो महिमा गाई जाती है वो दिखने में एक जैसी लगती है, लेकिन फिर भी उसमें अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? जैसे रंग, लाल रंग दिखने में लाल लगता है, लेकिन उस लाल रंग में भी कितने ही रंग होते हैं, कितने ही अलग अलग, लाल रंग में भी सैकड़ों रंग निकाले जा सकते हैं, सैकड़ों शेड्स निकाले जा सकते हैं, कोई हल्का, कोई गहरा, कोई मध्यम, कोई कैसा। दिखने में तो लाल है, लेकिन लाल भी अनेक अनेक तरह से होता है। इसी तरीके से जो प्रार्थनाएं भगवान के प्रति हम लोग सुनते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे भाव का अंतर होता है। किस भाव से हमारी प्रार्थना, हम क्या भाव है हमारा उस प्रार्थना के भीतर, ये एक विशेष बात है। क्योंकि भाव का ही अभाव है, गुरु महाराज कहते हैं सब कुछ है, भाव का अभाव, भाव का अभाव हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो हम अपनी संस्था, हमारी संस्था का नाम कृष्ण भावनामृत, भावना शुरू में ही भावना, हमारी भावना प्रार्थना के प्रति, हमारी भावना क्या भावना रहती है हमारी प्रार्थना के प्रति, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यदि एक माँ के अनेक बच्चे हैं तो बच्चों की दृष्टि में माँ एक जैसी होती है, बच्चे देखते हैं कि ये मेरी माँ है, लेकिन माँ की दृष्टि में हर बच्चे का अलग स्थान होता है, हर एक विशेष स्थान होता है। उसको मालूम है कि मेरा किस बच्चा किस गुण से, किस सेवा में, किस भाव से मेरे से प्रेम करता है, तो वो माँ जानती है कि हर बच्चे का विशेष स्थिति क्या है। इसी तरीके से भगवान जानते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना करते समय क्या हमारा भाव जो होना चाहिए वैसा है। साधारण रूप से जब हम नित्य प्रति प्रार्थनाओं में सम्मिलित होते हैं तो एक जिसको कहते हैं रूटीन, जिसे एक रूटीन बन जाता है कि ये गाना है, लेकिन उस वक्त शायद मेरे तो कुछ भाव में कमी होती है, मैं इसको महसूस करता हूं। नमो नमा तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमा, तुलसी महारानी की हम लोग प्रातःकाल जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे स्टार्ट होती है, शुरू होती है नमो नमा, तो हम लोग करते हैं नमो नमा। तुलसी महारानी आप क्या करो, आप जो है हे तुलसी महारानी, आप प्रियतमा, आप क्या है, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं, एकमात्र इच्छा है। और जब कोई आपकी शरण लेता है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, उस पर आप अपनी कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। तो जब हम प्रायः सुबह ये तुलसी आरती का गायन करते हैं तो क्या हमारे मन में ये भाव जागृत होता है कि मेरी केवल एकमात्र इच्छा है ना? हम गा तो लेते हैं, नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद अलाद दाइने, भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हैं, तव कर कमल वरे नाखां अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यप तनुभृंगम, गा लेते हैं, जीवा तो आदि हो गई, अभ्यास हो गया, लेकिन कभी कभी इन प्रार्थनाओं को, ये जो प्रार्थना है तव कर कमल वरे, नमो नमो तुलसी, प्रेयसी। इसका कभी हमें ध्यान से बैठ के मनन और अध्ययन करना चाहिए। जब हम पुराने हो जाते हैं मंदिर में आते आते समय हो जाता है, तो एक ये प्रार्थनाएं हमारे एक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, अवश्य बन जाती हैं, और बहुत अच्छा है, उससे बहुत लाभ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाव में जो भाव होना चाहिए वो भाव कभी कभी हम उस भाव से अछूते रह जाते हैं। वो भाव हमारा कैसे उस वक्त जागृत हो, कैसे? प्रभुपाद कहते हैं कि यू शुड ज्वाइन इस्कॉन एवरी डे, आपको प्रतिदिन इस्कॉन ज्वाइन करना चाहिए। याद कीजिए, जब हम प्रथम कभी मंदिर में आए होंगे तो हमने कैसे एक एक आरती को, एक एक प्रार्थना को ध्यान से सुना होगा। उस ध्यान को भगवान देख रहे थे, हमारे उस ध्यान को, हमारे उस समर्पण को भगवान देख रहे थे, और हम भगवान की कृपा प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद और सब भक्तों के साथ जुड़े। गोकर्ण की कथा भागवतम के महात्म्य में आती है। गोकर्ण जब धुंधकारी को भागवतम की कथा सुना रहे थे, तो एक एक करके बांस के अंदर गांठ टूटती जा रही थी, और सात दिनों के भीतर सारी गांठें टूट गई, और फिर वैकुंठ से विमान आ गया। धुंधकारी उस विमान में बैठ के वैकुंठ को चले गए, लेकिन और भी तो बहुत सारे श्रोता थे, कथा सुनने वाले, केवल एक धुंधकारी तो नहीं था, और भी बहुत सारे श्रोता थे, लेकिन विमान तो केवल धुंधकारी को ही लेके गया। हम क्यों नहीं, हम विमान में क्यों नहीं बैठ पाए, सबका प्रश्न था। कथा तो हमने भी सुनी। हाँ, कथा तो आपने भी सुनी, विष्णुदूत ने कहा, लेकिन जितनी तन्मयता से, जितने भाव से कथा धुंधकारी ने सुनी, वो भाव आपका नहीं था। तो अब क्या होगा, अब कैसे होगा? अब दोबारा गोकर्ण ने फिर कथा करी। अब जब कथा हुई, तब सबने इतने ध्यान से, इतने तन्मयता से कथा सुनी कि सबके सब विमान में फिर चढ़ गए, सबके सब विमान में चढ़ गए। भगवान मेरे भाव को देखते हैं, भगवान भाव जनादन ग्राही भगवान। मुझको कम बोलना आता है, मुझको स्तुति करनी नहीं आती। ध्रुव महाराज जब वन में गए, 5 वर्ष के बालक के समक्ष जब भगवान प्रकट हो गए, तो ध्रुव को स्तुति करनी नहीं आ रही थी भगवान के समक्ष। भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की, भगवान ने अपने शंख को उसके कपोल से स्पर्श किया, और ध्रुव महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति, बड़ी सुंदर प्रार्थना करने। भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। एक बार एक बच्चा मंदिर में गया अपने माता पिता के साथ। बच्चा छोटा ही था, बहुत छोटा बच्चा था, और देख रहा था कि सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं मंदिर में, और उसको तो प्रार्थना करनी अभी आती नहीं थी, सीखा नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं था, फिर भी उस बच्चे के अंदर बड़ा भाव जागृत हो रहा था कि मैं भी कुछ प्रार्थना करूं। छोटा बच्चा नर्सरी में जाने वाला, स्कूल में, तो उसने आंख बंद करके कुछ बोलने लगा, कुछ होंठ हिलाने लगा, बुदबुदाने लगा और खूब देर तक करता रहा। तो सब उसके माता पिता देख रहे थे कि बच्चा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो जब बाहर निकले मंदिर से तो उनके माता पिता ने पूछा कि तुम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे, तुम कौन सी प्रार्थना कर रहे थे। उसने कहा मुझे प्रार्थना करनी तो नहीं आती पिताजी, लेकिन मैं जो स्कूल जाता हूँ तो मेरे को ABCD सिखाई, मैंने A to Z तक भगवान को सुना दी। मैं कहा आप इसमें से प्रार्थना बना लो, आप अच्छी से अच्छी प्रार्थना मेरी तरफ से बना लीजिए। अब बताओ भगवान जो प्रार्थना बना दे अगर बच्चे की तरफ से तो कैसी प्रार्थना होगी, कैसी सुंदर होगी। मुझे तो ABCD आती है, मैं वो आपको सुना, मैंने तो ABCD भगवान को सुना दी। तो भगवान हमारे भाव को देखते हैं कि हमारा भाव क्या है, प्रार्थना के समय हम किस भाव में हैं। अर्जुन ने भी प्रार्थना करी भगवान से, भगवद गीता में भगवान को कहा कि हे महात्मा आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर भी आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके कहे अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। कुंती महारानी प्रार्थना करती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरावस्थितम। श्रीमती कुंती ने कहा मैं आपको नमस्कार करती हूं क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों द्वारा अलक्ष्य हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रार्थनाएं हैं, तो प्रार्थनाओं के भीतर क्या उसका एक चार्ट होना चाहिए, प्रार्थनाओं का चार्ट कैसा होना चाहिए। प्रार्थना में सबसे पहले जब हम भगवान के प्रति कोई प्रार्थना करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे समक्ष पहला लक्षण जो है वो होना चाहिए शरणागति का। बगैर शरणागति हुए हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते, सबसे पहले शरणागति। और शरणागति कितनी होनी चाहिए, कितनी शरणागति हमारी होनी चाहिए। ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथा बजामि अहम्, मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं भजामि अहम्, या मैं उनकी सेवा करता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जब प्रार्थना का विषय आता है तो पहली सीढ़ी जो है वो होती है शरणागति की। शरणागति के द्वारा हम भगवान को नमस्कार करते हैं, नमो नमः, है ना। यहाँ पर जब तक शरणागति का भाव नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्रार्थना नहीं कर सकते। नमो नमः क्लेश विनाश नाया, आपको हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब भगवान को शरणागति हो जाती है तो शरणागति के बाद फिर भगवान की महिमा गाई जाती है, भगवान की महिमा, शरणागति के बाद महिमा। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामे। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपनी स्तुति में, प्रार्थना में, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, वेदों के द्वारा भगवान को जान पाना दुर्लभ है, भगवान को जान पाना दुर्लभ है। और यहाँ पर भगवान जो कहते हैं है ना, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। और ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेशु दुर्लभम, वेदों के द्वारा आप नहीं जाने जाते। अब क्या है ना, दोनों बातें टकरा रही हैं आमने सामने। भगवान कह रहे हैं मेरे को वेदों के, वेदों से मैं ना जाना जाता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप वेदों से नहीं जाने जाते। तो जब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं लेंगे, अचिंत्या भेदाभेद होता भी है और नहीं भी होता, दोनों तरफ है ना, अचिंत्या भेदाभेद का जो सिद्धांत है, जब तक उसको हम नहीं समझेंगे तब तक हम वेदों में घूमते रह जाएंगे, वेदों में घूमते रह जाएंगे। तो इस तरीके से भाव में, और यहाँ पर जो शिला प्रपात बताते हैं, प्रथम जो तात्पर्य में लिखा है, निरूपिता शब्द जिसका अर्थ है निष्कर्ष निकाला, अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरूपिता का मतलब कि भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं, वेदों में भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। निरूपिता का मतलब ये है कि इसमें आप प्रगति के लिए कोई शोध करना नहीं होता, वेदों में निष्कर्ष रूप से सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वेदों के द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त करना पूर्ण तथा निर्णायक होता है। वेदों का कथन है श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाएं नहीं समझी जा सकती। सेवोन मुके ही जीवादो समेव स्मृत यदा, जब भक्त अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है तो भगवान अपनी अहेतुक दया से भक्त के समक्ष स्वतः प्रकट हो जाते हैं। अब मुझको बुद्धि दी है भगवान ने, मुझको मन दिया है, मन बुद्धि इंद्रियां, और मैं भगवान को खोजना चाहता हूं, मैं भगवान को ढूंढना चाहता हूं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान को ढूंढने की खोजने की आवश्यकता नहीं है, निरूपित पहले से निर्णय किया जा चुका है, पहले से बताया जा चुका है ये भगवान कौन है। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, गोविंद ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है, सब कारणों के कारण है। आपको वेदों में खोजने की आवश्यकता नहीं, आपको ज्ञान अर्जित करने की। तो फिर मेरे को जो मन, मेरे को जो बुद्धि, मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है उसको मैं क्या करूं? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं और उस बुद्धि से, उस मन से, उस इंद्रियों से केवल तुम भगवान की सेवा करो, केवल सेवा करो। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे वैसे वैसे भगवान स्वयं अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर देंगे। एक व्यक्ति पेड़ की जड़ को खोज रहा है और एक व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी डाल रहा है, तो कौन अधिक बुद्धिमान है? पानी डालने में, जड़ ढूंढ ली, देख ली, बस पता है जड़ यहां है, तो अब क्या करना है, जड़ में पानी डालना है। जड़ को खोजने में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना। तो इसी तरीके से यहां ये जो निरूपित शब्द जिसको बताया गया है कि भगवान कौन है, इसका निर्णय हो चुका है। सब शास्त्रों में, सब जगह हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमको केवल अब उस मार्ग पे चल के सेवा करने की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान मन और वाणी की वेग से अधिक तेज चलते हैं, है ना। और यहाँ श्लोक में भी आ रहा है जो प्रचेतास कह रहे हैं, आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं, आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जा सकते। अब बताइए हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो मन और वाणी की गति से तीव्र जा सकते हैं और जो इन इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, उस भगवान श्री कृष्ण को मैं क्या अपने प्रयास से प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने तपोबल से प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, पंथास्तु कोटि शतवर्ष प्रमज्ञो वायोरथापि मनोसो मुनिपुंगवानं सोऽभ्यस्ति यत् प्रपश्यम्य विचिन्त्य तत्वे गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। शुद्ध भक्ति के अनुभव द्वारा ही गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति संभव है। अष्टांग योगी हजारों लाखों वर्ष तक समाधि के अभ्यास द्वारा कैवल्य यानी अद्वैत स्थिति का अनुभव प्राप्त करते हैं और इतने ही समय तक चित अचित में भेद करके एवं नेति नेति के सूत्र द्वारा मयिक वस्तुओं का एक के बाद एक त्याग करके अद्वैतवादी जीवन भगवान के निर्विशेष ब्रह्म रूप में समा जाते हैं। तो जितना हम भगवान के प्रति चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पद से अथवा निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पद से शत कोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणाविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच हो सकती है, उन आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। तो भगवान तो केवल हमारे प्रयास से संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं। यशोदा मैया ने जब भगवान को बांधा तो दो उंगली मात्र रस्सी छोटी रह जाती थी। तो आचार्य गण बताते हैं कि दो उंगली क्या है, पहला प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा, दामोदर की कृपा। तो हम जिसको तेज गति, जो मन की वाणी, मन से तेज गति से, वाणी की तेज गति से जो चलते हैं, उन भगवान को हम अपनी शक्ति से, हम ज्ञान से, हम बुद्धि से कैसे पकड़ सकते हैं? लेकिन भगवान आप चाहें तो उससे अधिक वेग से हमारे को पकड़ सकते हैं, हमारे को संभाल सकते हैं, हमारे गिरे हुए पतित आत्माओं को आपकी कृपा के बगैर हम एक क्षण भी इस धराधाम पे नहीं टिक सकते, नहीं टिक सकते। अये नंद तनुज किंकरम पतिता माम विषमे भवामुदो कृपया तपात पंकज स्थित धूलि सदृश विचिताया। मैं पतित जीवात्मा अनेक अनेक समय से विषयी भवामुद, विषयी भवसागर में गिरा पड़ा हूँ, तो क्या मैं अपने सामर्थ्य से इस भवसागर से बाहर निकल सकता हूँ? नहीं निकल सकता। कितना भी प्रयास कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन अगर हे गोविंद आपकी कृपा हो जाए तो आप शीघ्रता से मेरे को उठा सकते हो, शीघ्रता से आप मेरे को उठा सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ और प्रार्थनाओं के बारे में, अगर आप, क्योंकि हम जितने भी भक्त लोग, आप लोग, हम सब लोग यहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में भगवान के समक्ष प्रार्थनाएं की हैं, और उन प्रार्थनाओं को हम कैसे उस भाव को बनाए रखें और उस भाव को खूब गाढ़ा करें, उस प्रार्थनाओं के भाव को गाढ़ा करें, वो केवल एक एक रोज का एक केवल एक जिसे कहते हैं कि नियम के अनुसार केवल एक भाई करना ही है इसको, वो ना हो करके इन प्रार्थनाओं के अर्थ को कभी कभी हमें ध्यान करना चाहिए एकांत में, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमको वो भाव दो, आप भाव दो, श्रीला प्रभुपाद हमको भाव प्रदान करें, ताकि हम उस भाव सहित भगवान की प्रार्थनाओं का गायन कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।